तफसीर पे जाने से पहले हम थोड़ा सा आज के सबक का खुलासा करेंगे। हम अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी रहमत से आज कुरान पाक के उस मुकाम पर है जिसको आप ख़वातीमुल बकरा कह सकते हैं। आखिरी रुकू है सूरत अल बकरा का, और इस रुकू के अंदर कुछ ऐसी आयात हैं और कुछ ख़ास बातें हैं जो बाकी पूरे कुरान पाक में हमें नहीं मिलती। अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी रहमत से है। एक रुकू है, 3 आयतें हैं। बिल्कुल इसी किस्म का एक रुकू हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। कौन सा? जिसमें आयतुल कुर्सी थी। फ़र्क इतना है कि उसमें 4 आयतें थी, इसमें 3 है। जिस तरह आयतुल कुर्सी वाला वो रुकू बहुत अहम था और उसके अंदर अल्लाह ताला की तौहीद, उसकी रबूबियत, फिर उसका इंसानों को हिदायत की तरफ बुलाना था, बिल्कुल इसी तरह से ये आखिरी रुकू भी बहुत अहम है। आप कह सकते हैं कि आयतुल कुर्सी अगर तौहीद के मौजू पर कुरान पाक की जामे तरीन आयत है, तो इस रुकू की आखिरी आयत कुरान पाक की जामे तरीन दुआ है। सबसे खूबसूरत दुआ आज हम पढ़ने वाले हैं। फिर कुछ और बातें जो इसके बारे में हैं वो क्या कि ये आयात जो हम पढ़ने लगे हैं ये ज़मीन पे नहीं नाजिल हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मौके पर तोहफे में अता हुई थी। किसी की बात जो उसने मोहब्बत से कही कि पूरे कुरान के लिए कुरान को ऊपर से नीचे लाया गया, ऐसी हुआ था ना नज़ुल, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, और अल्लाह के नबी के दिल पे आता था। लेकिन इन आयात के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पे बुलाया गया। कोई तो बात होगी, कोई बात ऐसी नहीं होती। और हम कुरान पाक का ये मिजाज देखते आ रहे हैं कि सूरतों का आगाज़ और सूरतों का इख्तिताम दोनों बहुत अहम है। ख़ास तौर पे अगर आप सूरत अल बकरा के आगाज़ को ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह से लेकर पहला रुकू जो हमने मुत्तकीन के बारे में पढ़ा और कुफर पे उसकी बात ख़त्म हुई, उसको और इस आखिरी रुकू को मिला लेंगे तो आपको दोनों में ईमान की बात दिखेगी। वहाँ सिर्फ इतना कहा गया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीन युमिनून बिलग़ैब, बस कह लीजिए कि वहाँ ईमाने मुजमल था। मुजमल कहते हैं कॉन्साइज्ड, कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, और यहाँ ईमाने मुफस्सल है, खोल के बयान करना, यानी यहाँ ईमान की तफसीलात हैं। और इन आयतों के अंदर हकीकत में एक बंदे का अपने रब के साथ ताल्लुक़ जुड़ता है कि एक बंदे का अल्लाह के साथ ताल्लुक़ क्या होना चाहिए, आका और ग़ुलाम का, आबिद और माबूद का, साजिद और मस्जूद का, या फिर अल्लाह के साथ बंदे का ताल्लुक गौर व फिक्र और मोहब्बत का होना चाहिए। इस सबक से हमेशा ही मैंने अपने दिल में, आज भी मेरा दिल वैसे ही धड़क रहा है जैसे शायद पहली दफ़ा पढ़ाया था तो धड़क रहा था। यकीन करें ये वो आयतें हैं कि जिनको पढ़ते वक्त अगर हमारा ताल्लुक बिल्ला ना दुरुस्त हुआ तो फिर कम ही होगा। पीछे आयतें बिर जिसको आप कहते हैं लैसल बिर 177 में भी हमने ईमान की तफसीलात पढ़ी थी और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ की बात हुई थी, तो ये आयतें भी ऐसी ही हैं। इन आयात के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें बहुत खूबसूरत अहादीस भी मिलती हैं जिनका खुलासा क्या है कि आपने उस शख्स को बड़ा ही गाफिल करार दिया कि जो रात को सो जाए और ये आयतें ना पढ़े। हम खुद को पूछ लें, हम किधर हैं? क्या हम उन लोगों में से हैं कि जो रात को सोने से पहले इन दो आयतों की तिलावत करते हैं? और क्या कोई छू मंतर जादू टूना है? क्या वजह है? तो लिख ले कि जहाँ भी अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह की मार्फत की बातें होती हैं, वो आयतें अल्लाह सुबहान तआला की मार्फत देती हैं और उसमें हकीकत में इंसान अपने ऊपर गौर व फिक्र करता है। इन आयात में इंसान को अल्लाह ताला के मुहासबे की फिक्र भी मिलती है कि मेरे से अल्लाह ताला पूछेगा, अल्लाह ताला की मलकियत का एहसास भी मिलेगा आपको, आपका अपना ना होना भी मिलेगा। और सबसे बढ़ के नबी जो दूसरों को कहते हैं उनका खुद अपने अमल को देखना भी मिलेगा। ये जो रिवायत है कि नबी सल्लम पढ़ते थे, ये ख़ास तौर पे आखिरी दो आयतों की आती है, लेकिन चूंकि इंट्रोडक्शन है, शुरू है, तो फिर हम इसमें इसको अमूमन पूरे रुकू पर ही ले लेते हैं। देखते हैं कि ये आयतें मुझसे क्या कहती हैं, हमको काट दें मुझसे क्या कहती हैं।